दृढ़ निश्चय। विश्व सृजाम, विश्व के जनों को का, विश्व जनों का पिपिप्रुहे पूरा करो, इंद्रिम इंद्र के द्वारा उत्पन्न, च भी मायाम माया उपधर्म तथा कथित सन्यास के अधर्म का, मातरम माता प्रचंड घातक पाखंड पथम पाप पूर्ण कर्मों का मार्ग। प्रभु हे भगवान जय हे, जीत लीजिए। अनुवाद एंग तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हे प्रजा के पालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा निर्मित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तात्पर्य, श्री ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी को प्रजापति रूप में इसलिए संबोधित करते हैं जिससे वे अपनी प्रजा की शांति तथा संपन्नता को स्थिर रखने के दायित्व को न भूलें। श्री भगवान ने महाराज पृथ्वी को इसी कार्य के लिए शक्ति संपन्न किया था। आदर्श राजा का यह कर्तव्य है कि वो देखें कि लोग धर्म का ठीक से पालन करें। ब्रह्मा ने राजा पृथ्वी से, विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा निर्मित छद्म धर्म पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। दूसरे शब्द में, राज्य का राजा का धर्म है कि वो अनैतिक व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए छद्म धर्म पर रोक लगाएं। मूलतः धर्म एक है जो श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है, और यह दो रूप में परंपरा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने पृथ्वी महाराज से विनती की कि वे इंद्र से वृथा स्पर्धा ना करें। वो तो आपके द्वारा 100 यज्ञों को पूरा न होने देने पर तुला हुआ था। विरोधी क्रिया करने की अपेक्षा महाराज पृथ्वी के लिए श्रेयस्कर होगा कि यज्ञों को बंद कर दे, अच्छी सरकार स्थापित करने तथा उचित व्यवस्था लाने के लिए यह किया गया। धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति वैराग्य विद्या की सहारा लिए बिना धर्म की पालन नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा गोकर्ण की बड़ा सुंदर सा स्टेटमेंट श्रीमद् भागवतम में है, देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दीशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानीशं जगत ईदं क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरांग पिवत्तुम। देहे, शरीर की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि शरीर की देखभाल मत करो, परंतु महात्मा गोकर्ण कहते हैं जब कोई व्यक्ति, भागवत कहती है देहापत्य कलत्रादि, देह मतलब ये शरीर 24 घंटे दिन में शरीर की सजावट में रहता है, है? शरीर को सजाना, शरीर को श्रृंगार करना, ये वृत्ति जो है धर्मपरायण वृत्ति फिर नहीं आ सकता, क्योंकि हम शरीर सुख में केवल लग गए हैं। सारा विश्व आज शरीर की कंफर्ट में पड़ा है, शरीर को किस प्रकार सुख दिया जाए, पर शरीर स्थित जो आत्मा है उसके लिए विचार कौन करता? केवल मनीषी गण, विद्वान गण, भक्त गण आत्मा की चिंता करते हैं। इसलिए महात्मा गोकर्ण प्रथम शब्द में कहते हैं जे देह, ये देह हे माता, ये देह रूपी अभिमान को बात, श्रृंगार को, श्रृंगार से दूर रहो। देह मांस रुधिरे, ये जो शरीर है ये तीन चीजों से बना है मेनली, मांस, हड्डी और रक्त। हे माता, ये जो शरीर है रक्त मांस और हड्डी की जो पिंजरा है, इससे जो अभिमान है, आसक्ति है, आप इससे त्याग दो। देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्तुम, और जाया सुतादीसु सदा ममतंग विमुंच। जाया कहते हैं पत्नी को, माता वर्ग मेरे ये नहीं सोचना जो मैं किसी की निंदा व स्तुति कर रहा हूं, ये शास्त्रों का, ऋषि महर्षियों का स्टेटमेंट है, परंतु ये शब्द का अर्थ जाया सुता दीशु सदा ममतांग विमुंच। जाया मतलब ये पत्नी, सुत मतलब ये पुत्र, और घर की जो आसक्ति है इसे भी त्याग दो। पर यदि वह यहाँ जाया शब्द की प्रयोग है, पर शास्त्र को यदि आप ठीक से स्टडी करो, जाया के बारे में शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात भी कही है, पर हम किस जगह पर किस बात को कहते हैं ये समझना बहुत आवश्यक है। एक एक ऋषि की ये स्टेटमेंट है, जस्य भार्या गृहे नित्य मधुरा प्रिय भाषिणी तस्य वर्धन्ति गात्राणि शुक्र पक्षे शशि जथा। जिसके घर में गृहिणी की पत्नी बहुत मधुर बोले, आने जाने व्यक्तियों को बड़े सुंदर ढंग से स्वागत करे, और उस घर की सुख संपदा धन दौलत वो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा प्रतिपद से लेकर पूर्णिमा तक पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर देता है। कितनी सुंदर बात है। पर यहां पर जाया शब्द की जो बात आया, जो भोग विलास में रत है, व्यक्ति को खींच करके भगवान की ओर जाए बिना और संसार की ओर ले ले, उसकी चर्चा है। उस प्रकार की अभिमान को त्याग दो। जाया सुतादीशु सदा ममतांग विमुंच पश्यानीशम जगत ईदम क्षणभंग निष्ठम। ये संसार को देखो, पल पल में ये बदल जाता है। सबसे बड़ी आश्चर्य मानव के सामने आज ये है, वो सत्य को देख करके नहीं देख पाता। कौन सी चीज को हम नहीं देख पाते? पल पल पग पग पर दौड़ता हुआ हमारी ओर मृत्यु आ रही है, पर हम अनुभव नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी आश्चर्य है संसार का। महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज को यक्षराज ने ये प्रश्न पूछा, किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर में कहा, अहन्य हनी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। हे यक्षराज, जो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, हम देखते हैं हमारे परदादा, पिता, माता, ग्रैंडफादर चले गए, परंतु कभी हमें ये अनुभव नहीं हो जाता जे मृत्यु भी एक दिन हमें आएगा। ये बात को हम हमेशा भूल बैठते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार का। देखो स्लॉटर हाउस में भक्त भक्तगण जब एक गाय कटती है, दूसरा गाय उसके सामने हरियाली घास चुबा रहा है, खाता है, पर उसे ये पता नहीं है जे आने वाला जो समय है इसका ही नंबर है। उसी प्रकार निश्वास नहीं विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति। निश्वास जो शरीर के अंदर प्रवाहित है ये कब रुक जाए किसी को नहीं पता। इसलिए मानव को चाहिए धर्मपरायण कार्य, धर्म की जो नियम है उसको पालन करते हुए अपने जीवन को बड़े आनंद रूप से बिताए। अधर्म के सहारा में बहुत दुख है। दूसरी श्लोक में इसकी व्याख्या है, ललाट लिखित मुजस्य। कौन व्यक्ति यहाँ ये कह सकता है मेरे ललाट पर मृत्यु की चिन्ह नहीं है, मैं अमरत्वर को प्राप्त किया हूं? कोई नहीं है। मृत्यु संसार में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है। तो ललाटे लिखित मुजस्य मृत्युर मृत्यु क्षर द्वय स तथा कृते पापम समस्त क्लेशदायकम। जिसके सर के ऊपर मृत्यु मंडरा रहा हो, जिसके सर के ऊपर मृत्यु लिखा हो, वो जानबूझकर फिर इतने पापमय कर्म क्यों करता है? अगर उसे अनुभव हो जाए फिर वो पापमय कर्म में कभी नहीं जाएगा, अधर्म के रास्ता पर कभी नहीं चलेगा। तो पश्चनीसम, आप संसार को देखो कैसे देखो ना, पल पल में वो बदल जाता है। पश्चनीसम जगद ईदम क्षणभंग अनिष्टम, ये क्षणभंगुर है। जो कुछ भी आप देखते हो आज है और काल नहीं है। उनमें से ये हमारा एक मानव शरीर भी है। 15 साल पहले आप अपने शरीर को देखो, आपके पास कोई फोटो है उसे देखो, और 15 साल 20 साल के बाद एक फोटो देखो, उसमें बहुत फर्क नजर आएगा अपनी आंखों से, क्योंकि बदल गया है। चाणक्य जी कहते हैं जे कुमारी कन्या तुम क्या ढूंढ रही हो, तुम्हारी आंखें तो बड़े सुंदर था, इतनी सुंदर सुंदर बातें तुम कर रही थी, पर आंखें नीचे क्यों गड़ गई? भले मूर्ख जानते नहीं हो मैं मेरी जौवन ढूंढ रही हूं, कहां टल गई है वो, इसलिए मेरी आंखें नीचे गड़ गई क्योंकि मैं ढूंढ रही हूं। वास्तव में जौवन एक बार चले जाए वो दोबारा नहीं आता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए जौवन को संभाल के चलाए। जिसने अतीत आया नहीं है, वर्तमान से सभी का उत्पत्ति हो जाता है, वर्तमान ही अतीत हो जाता है और आने वाला जो वर्तमान है वो भविष्य है, आएगा। तो जिसने वर्तमान को संभाल लिया है उसकी भविष्य बहुत मधुर है। जिसने जौवन को संभाला है उसकी हमेशा जय जयकार हुआ है, क्योंकि जौवन एक ऐसी चीज है, जौवन एक ऐसी संपत्ति है, अमूल्य अवदान ठाकुर जी का है। जौवन ही सब कुछ किया जा सकता है। बाल्य च पठते विद्या, बाल्यकाल में हम विद्या आहरण करें। यौवने अर्थ चिंतनम, तृतीय अर्जति धर्म, चतुर्थ किं करिष्यति। जब बुढ़ापा ग्रास ले फिर मनुष्य क्या कर सकता है? कोई कर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियां शीतल है। हम चलने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति भी डैमेज हो जाता है। तो यौवन ही एक चीज ऐसा है जो सब कार्य को सुलभ रूप में आगे हम ले सकते हैं। इसलिए यौवन को संभालो। पश्चनीसम जगत इदम क्षणभंग अनिष्ठम वैराग्य राग रसिको। वैराग्य विद्या के अभ्यास करना चाहिए, जिसको कहते हैं डिटेचमेंट, लाइक ए कोकोनट। जब हम नारियल के पेड़ से तोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है नारियल। नारियल को आप पेड़ से तोड़ो, उसी क्षण से वो सूखना शुरू करता है, पर एक अवस्था उसका ऐसे आता है जब आप इसे बजाओ तो उसके अंदर की जो नारी पानी वगैरह है सब सूख करके ऊपरी जो कवर है उससे वो बिल्कुल डिटेच हो चुका है, पर उसके अंदर रह रहा है। और दूसरी उदाहरण लाइक ए कमल के फूल, सरोवर के अंदर खिलता है पर सरोवर की जल उसे स्पर्श नहीं कर सकता, जब ही कि उसके नाम है पंकज, वो पंकज से उत्पन्न होता है पर पानी के ऊपर खिलता है। ऐसे संसार में रहो पर संसार में लिप्त ना हो जाओ। भाव अभाव में बदल जाए बहुत तकलीफ होता है। हम भावपूर्ण व्यक्ति हैं पर अभाव के सामने आ जाए अभाव हो जाता है, और जब अभावी व्यक्ति हो जाए, बंगाली में कहावत है अभावे हाय स्वभावेर हानि, जब व्यक्ति को अभाव हो जाए उसकी स्वभाव में भी दोष आ जाता है, क्योंकि मांगने लगता है, लोग जानबूझ के आएगा कुछ मांगेगा, दरवाजे भी कभी बंद कर देते हैं, नहीं तो उसे अवॉइड कर जाते हैं ना। इसलिए ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ो और पकड़ करके संसार को देखो। पर हमारी चैतन्य महाप्रभु की वाणी है चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापणम। तो ये चित्तरूपी जो दर्पण है ये अभी एक एंगल में सेट है, तो हम केवल संसार को देखते हैं। संसार बहुत अच्छा लगता है, संसार में कुछ आनंद जरूर है, किंतु संसार के पास बुढ़ापा को संभालने के लिए कोई साधन नहीं है। संसार के पास जौवन को संभालने के लिए, जौवन को बिताने के लिए हजारों साधन है, पर जौवन जब टलकर बुढ़ापा ग्रास ले शरीर को, ये संसार के सामने बुढ़ापा को खुश करने के लिए कोई साधन नहीं है। किंतु ठाकुर जी बड़े कृपालु है, वो सदैव जीव के साथ है, वो बाल्यकाल से भी और यौवन में भी और वार्धक्य में भी। इसलिए पश्चिमी सम जगत ईदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य विद्या को अभ्यास करते हुए भक्ति में निष्ठ रहो। धर्मम भजस्व सततम, हे मानव हे प्राणी धर्म की उपासना करो, धर्म का ही भजन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म की भजन तुम कैसे कर सकते हो जब लौकिक धर्म से आप दूर नहीं होगे। लौकिक धर्म को परित्याग करो, धर्म की उपासना करो। त्यज लोक धर्मान और क्या, ना सेवस्य साधु, साधु की सेवा नित्य प्रति होना चाहिए। साधु मतलब हम सभी साधु वर्ग में आते हैं, वी आर प्रैक्टिशनर ऑफ द अर्ली स्टेज ऑफ द साधु, सो डे विल कम मर्सी ऑफ गुरु मर्सी ऑफ लॉर्ड मे इट विल पॉसिबल वन डे मे वी विल बी गुड साधु, बट इन द प्रेजेंट मोमेंट वी आर ट्राइंग स्टूडेंट, एंड इट इज वेरी वेरी नेचुरल इन द स्टूडेंट लाइफ मिस्टेक कैन बी हैपन, nobody perfect in this material world, but when mistake we commit some mistake in some knowledgeable person, some authority or some elderly person come front of us and he advises, Prabhu why you do this type of activity, it is not a good thing to do, do not do it, the answer is oh, what much qualification you have to instruct me, I am PhD, don't instruct me, that attitude is called demonic attitude, because we already commit mistake and somebody want to rectify it or give some knowledge, please Prabhu come out of it, and the answer is so rude, so that is called demonic mentality. What is the devotee or demigod's mentality? Yes, mistake is happen. I will try my best because I'm a human. I can correct. But day will come, I promise you, Prabhu, these things will never happen again. Radha Ras Bihari Bhagavan ki jai ho. That is called demigod mentality. There is a three people we see in our material world. Manav, Devata or Asur. Asur wo hai. Galti karne ke baad jo uske upar ghamand rakhe. Nahin. Hame asur ki vritti mein nahin jana chahiye. Hame bilkul satya vritti mein. गुरु और ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। तो इसलिए पश्चनी समझगत इदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु। साधु की सेवा करने से बहुत फल है। लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। पर साधु भी बड़े उत्तम होना चाहिए। साधु का साधु जो है एक उत्तम होना चाहिए। केवल बाह्य साधु नहीं होना चाहिए। जो सजावट में साधु हो और हृदय में असाधु की स्वभाव हो। इट विल नॉट वर्क फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। इट विल नॉट वर्क। क्योंकि भगवान भावग्राही है। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किं नाम रूप अधिकं किं तत सुदाम्नो धनम वंशकः विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नतु गुणे। भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति से सेवा करता है किंतु अपनी गुण गारिमा से नहीं। कितनी पढ़ा लिखा है कितने नहीं। कभी कभी हम अपनी भक्त मंडली में देखते हैं एक अहम आता है क्योंकि वो कोई संस्कृत का स्कॉलर है बहुत अच्छा श्लोक पढ़ देता है और वाचा शक्ति भी उसकी बहुत सुंदर है वाणी भी बहुत सुरीला है। तो जो भक्त हमारा नहीं पढ़ पाते कभी कभी हम उनको थोड़ी सी डिस्टेंस में देख लेते हैं ना। प्रभु की सेवा में आए हुए भक्त लोग इक्वल राइट। चाहे उसकी शक्ति कितनी कम ना हो इक्वल राइट के ऊपर हमें देखना चाहिए। इसको बोलते हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रेमा प्रेम को बजाय रखना। एक दूसरे प्रति दूसरे को सम्मान करना। किंतु कभी कभी ये इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम न जनम न सुंदरी कविताम। बहु विद्या की भी आवश्यक नहीं है। सिंपली लिविंग हाई थिंकिंग श्रील प्रभुपाद फिलोसफी। सादा सीधा रहो उच्च विचार में जियो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषांजही काम तृष्णाम। साधु की दर्शन साधु की आना क्षण लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि। क्यों ना गंगा पापम शशि तापम दैनम कल्पतरु तथा पापम तापम च दैन्यम च हरेत साधु समागमे। गंगा जी पातक नाशिनी है वो सर्व पाप हारिणी है सभी की पाप धो लेती है परंतु वो एक कार्य करने में समर्थ है केवल पाप धो सकती है इसीलिए गंगा प्रसिद्ध है। गंगा पापम शशि कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का उदय जब हो जाए रात्रि काल में तो धरती की जो गर्मीपन है वो चला जाता है थोड़ा शीतलता हो जाता है वो गर्मी को हरण कर सकती है। किंतु चंद्रमा केवल शीतलता प्रदान कर सकती है दूसरा और कुछ नहीं। गंगा पापम शशि तापम दैनम कल्पतरु। कल्पतरु जो कल्पतरु पेड़ है हम उसके पास जाकर के हम अपनी वांछा प्रकट करें तो हमारा कल्पना इच्छा जो है पूरा कर देती है वो कल्पतरु है वो एक काम कर सकता है। किंतु पापम तापम च दैनम च पाप और ताप और क्रूर दीनता, ये तीनों चीज की निवृत्ति हो जाती है जब साधु के समागम हो जाए। इसलिए साधु की सेवा करना चाहिए, जैसे हम गुरु महाराज के शरण में हैं। सेवस्य साधु पुरुषांज ही काम तृष्ण, अन्नस्य दोष औरी की वृत्ति, धर्मपरायण धर्म के रास्ता पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए ये जो अंतिम चरण है श्लोक का बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है। अन्नस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितरांग पिबत्तम, दूसरे की दोष ढूंढना भी एक अवगुण माना गया है भक्ति जीवन में। क्योंकि जब हमारी वृत्ति ये आ जाए दूसरे में दोष देखना देखना और देखना, एक दिन सारा दोष अंदर भी आ जाएगा। पर यह शब्द का अर्थ नहीं है जो हमारे मंदिर के अध्यक्ष वर्ग हैं, अगर उनके कान में ये आए हमारे मंदिर में कि सांप घुस आया है, तो वो सतर्क ना रहे और उसके लिए विचार ना करें, इसका अर्थ ये नहीं है। क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, उनकी डिवोशनल सर्विस इज दैट श्रील प्रभुपाद टेम्पल हैज टू बी सिक्योर एवरी कॉर्नर ऑफ एक्टिविटीज व्हाट वी आर डूइंग अमंग द ऑल डिवोटीज, दैट्स व्हाई देयर अपॉइंटमेंट इज देयर, द पोजिशंस देयर, यू योर ड्यूटी, यू मेक श्योर श्रील प्रभुपाद टेम्पल हैज टू बी मैनेज प्रॉपरली एंड secure properly from outside material world. There is so many envious people, they want to destroy. मैंने उस दिन भी कहा था धर्म संकोचित तपि, धर्म संकोच में है अभी, कली की प्रभाव ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि कली युग है। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरांग पिबत्तम, सेवा, सेवा में एक बात और आता है। हम साधारण रूप से कहते हैं हम प्रभु जी की सेवा करते हैं, हमने इसकी सेवा किया ना, सेवा और आदेश में थोड़ी सी अंतर है। अगर हमारे श्रीमान प्रभु ये कहें जी भक्त लोग एक ग्लास जल लिया, मुझे प्यास लगी है, वो सेवा में नहीं आता, वो उनका आदेश का पालन है। उन्होंने जो आदेश दिया आपने उसका पालन कर दिया, एक ग्लास जल उनको प्रभु जी को दिया, प्रभु जी जल लीजिए, क्योंकि उन्होंने मांगा। सेवा का अर्थ ये है हम उस प्रभु जी के साथ इतने समय बिताए, उनकी स्वभाव से हमें परिचित है जो किस समय क्या चाहिए उनको, पर उनकी मन में ये बात आने से पहले, जुहाग्र से वो बात उच्चारण होने से पहले वो चीज उनके सामने आ जाए, वो सबसे सेवा है। ये एडवांस स्टेज की बात है, साधारण स्टेज की बात नहीं है। जब हम बहुत एडवांस होंगे फिर ये स्थिति आ सकती है, प्रभु जी जल जल लीजिए, अरे अरे कैसे मालूम पड़ा मुझे, मत जो बहुत प्यास लगी थी, वो सेवा है। सेवा कथा रसम हो नितरांग पिबत्तम। अगर कोई व्यक्ति ये कहे जे ये संसार भी बहुत अच्छा है, पर संसार की चरित्र चित्रण भी द्वैपायन मुनि व्यास देव जी ने ब्रह्म पुराण में बड़ा सुंदर स्पष्ट रूप में विवरण किया, एकः प्रसूयते विप्र एक एव हि नश्यति एकः तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्त दुर्गतिम् असहाय पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरु ज्ञाति संबंधि वर्गश्च मित्र वर्ग तथैव च। बोले एकः प्रसूयते विप्र, हे विप्र, जो जीव जब इस धरती पर उतरता है वो अकेला ही जन्म लेता है, उसके साथ और कोई आता है, कोई नहीं आता, वो अकेला, और उलग्न अवस्था में आता है, कोई कपड़ा भी शरीर में नहीं है, परंतु जब वो इस धरती पर जन्म ले लेता है तो ये सोच बैठता है ये मेरे पिता माता भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब है, ये मेरी रक्षा करेंगे, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, ये मेरे रक्षा करेंगे। परंतु साधारण रूप में
एक प्रसुवेते विप्र एक एव ही नश्यति। दैपायन मुनि व्यास कहते हैं एक जन्म लेता है फिर वो मरता भी है, एक मर भी जाता है, संसार का नियम तो वही है, एक व्यक्ति जन्म लेना, कोई मरना, कोई हंसता है, कोई रोता है, किसका घर टूट जाता है, कि कोई 10 तला बिल्डिंग बनाता है, सब संसार का खेल है। इसलिए संसार से आसक्त नहीं होना। हाँ, संसार का प्रभाव किसको पड़ जाए, मन अशांत हो जाता है, मन को ऐसे ट्रेंड करो संसार में आसक्त ना हो जाए, रुक ना जाए, रुकना बहुत कठिन है। और ये संसार से आसक्ति होने का प्रथम दरवाजा है दो आंखें, शरीर रूपी रथ का ये जो दो खिड़की है, ये खिड़की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खिड़की है। जितने कचरा, जैसे घर की गवाक्ष को विंडो को खुला रखो, हवा आया, हवा का झोंका आया तो सारा कचरा घर के अंदर घुस जाता है, क्योंकि दरवाजा खुला था। उसी प्रकार जब ये दरवाजा खोल देते हैं हम, तो जो चीज हमारा मन को भा जाए उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं। इसलिए आंखों को ट्रेंड ऐसे करो, इसलिए आंखों से ठाकुर जी की विग्रह को निहारना चाहिए, देखना चाहिए, देखने से आंखें शुद्धि होती है। आंखों से शुद्ध हो तो फिर संसार की जो सुंदरता है वो आंखों में आने के बाद भी हम विचार व बुद्धि के साथ उसको नियंत्रण करते हुए हम आगे निकल जाते हैं, उससे हम स्टक नहीं हो जाते। बहुत कठिन है ये तपस्या, इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी च्यवन इत्यादि की कथा श्रीमद् भागवत में आता है, वो तो केवल आंखें भी उनकी बंद थी, केवल कान के श्रवण माध्यम से उन्होंने संसार होने की विचार कर बैठा राजा के पास। तो और आप और हमारी बात तो कुछ तुच्छ बात है, साधारण बात है। इसलिए एक प्रसुवेते विप्र एक ही नश्यति, एक स्तरति दुर्गाणि गच्छति कस्तु दुर्गतिम। जब जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी सुख दुख आता है उसकी जीवन में, वो मानव का वो स्वयं ही झेलता है, उसके साथ कौन झेलता है, स्वयं ही। अच्छा, मृत्यु और जन्म की परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति ने जन्म लिया, हम सब आनंद मनाएं, क्योंकि ये जो पलक है वो खुल गया, और ये पलक रुक जाए तो उसी का नाम मृत्यु है, और पलक गिरता नहीं है, सभी रो पड़े। पर जन्म से लेकर अंत तक हम जिन जिन व्यक्तियों की सेवा किया, पर मृत्यु समय में उन्होंने हमारा साथ कहां दिया, हमको बचाया कौन? मृत्यु अपना है, हमारा मृत्यु दूसरे को नहीं आ सकता, इसलिए मृत्यु को पहचानो। श्रीमद् भागवत की शुरुआत अभिशाप से है, मृत्यु से है। तो मृत्यु जब उपस्थिति हो जाए सामने अपने व्यक्ति, उसको कैसे स्वागत किया जाए, वो टेक्निक प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए, नहीं तो भक्ति जीवन का क्या मूल्य हुआ। मृत्यु जब उपस्थिति हो जाए, पिता माता भाई बंधु पत्नी ये सब हमारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए दैपायन मुनि कहते असहाय, ये सब असहाय है। कौन असहाय? पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरु ज्ञाति संबंधी वर्गश्च मित्र वर्ग तथैव च। फिर जिन जिन व्यक्ति से हम इतने स्नेह भी करते थे, जब शरीर से प्राण वायु उड़ा, प्राण पक्षी चला गया, तो वही व्यक्ति ही कंधे पर लेकर के शुष्क काष्ठ समम जना, सूखे हुए लकड़ी के ऊपर डाल करके आग लगा दिए। और जब शरीर चिता के रूप में जल रही थी, मुहूर्तमीव रोदित्वा तत्जानती परांग मुखा, वो थोड़े क्षण के लिए रो पड़े, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरी पत्नी, भाई इत्यादि जो भी संबंध था, थोड़े क्षण के लिए रोए और मुंह मुड़ करके चले गए, और 3 दिन के बाद सारे बात को भूल बैठे। इसलिए राजा, धर्म नहीं त्याग देता तुम्हें, धर्म की उपासना करो। इसलिए धर्म परायण व्यक्ति बड़े विरले होते हैं, और भक्ति जीवन में आने वाला व्यक्ति धर्म धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म अंग है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए धर्म परायण होने के लिए संसार की जो प्रलोभन है, संसार की जो लूजन है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। संसार हमेशा ठगना चाहता है, स्पाइडर नेट जैसा, संसार स्पाइडर नेट जैसा है, उसमें जब मक्खी जाता है वो फंसता है। परंतु जो स्पाइडर नेट बनाता है वो कभी फंसा है देखा आपने, उसको वो निगल भी लेता है और मक्खी गिर जाए उसको वो खा लेता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मायाम एताम तरंतिते माम एव प्रपद्यन्ते। यो व्यक्ति मेरे उपासना में है, मेरे भजन में लगा हुआ है, मायाम एताम, वो इस दुष्टर माया को लांग सकता है, उसमें कोई शंका नहीं है। पर ऐसा मत सोचो माया भी भक्त नहीं है ठाकुर जी के, माया भक्त है। माया उसी के ऊपर प्रभाव डालता है जो व्यक्ति भगवान से दूर है। कृष्ण के भूलिया जे हो भगवांछा करे, पिछुने ते माया तारे जापटिया धरे। एक बार की कथा ऐसे हुआ, जनक महाराज अपने सिंहासन में बैठे थे, अष्टवक्र मुनि पधारे। अष्टवक्र मुनि आते ही जनक राजा ये प्रश्न पूछे, जे मैं माया से परे कैसे जाऊं, माया मुझे छोड़ता नहीं है, ये प्रश्न था जनक महाराज का अष्टवक्र मुनि के लिए। अष्टवक्र मुनि जनक राजा की सिंहासन के सामने खंभा था, अष्टवक्र मुनि गए और वो खंभे को जोर से पकड़ लिए, दोनों पैर को उठा करके खंभे को पकड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे देखो 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 मुझे खंभा पकड़ लिया है, अरे मुझे खंभे से छुड़ाओ, खंभे से छुड़ाओ, खंभा मुझे पकड़ रखा है। जनक महाराज समझ गए जे ये क्या कहना, very nice net to catch the all fish from the ocean or river whatever. So he threw, that is called janjala. Janjala jal rupena. Janjala rupi jal ko le karke kal phekta hai. Aur manav rupi machli usme phas jata hai. Phir wo khinch khinch ke leta hai. I remember when I'm so child, I do not know, I don't have any knowledge of anything. My grandmother, there is a called Bhata. Bhata means the yogi or one kind of the beggar, but that beggar has some respect. That beggar never come to door to beg something. But he only sing a song of devotional service song or Lord's glorification. People called him and give some food and some money or some rice, this and that, and he goes. But I remember that nice tune, and he sing a song, very beautiful song. Bhajo kinarama namore Govinda, bhajo kinarama namo भजिन पारिले कुल चंद्र मारे बांधी ने काल जम से ही काल जम बड़ दारुण रे न जानई दुख सुख बाछी नेब कंचा रखिब पाचिला देवटी दारुण दुख। दैट यमराज It is so cruel. He will never understand your good things or bad things. you are in good condition or bad condition. He will catch you. If you are not ripe properly, he will take you. But only ripe one, he, पका हुआ जो फल है उसको छोड़ देता है, कच्चा फल को उठा लेता है। ये शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द का अर्थ ये है, जो जो मस्तक प्रभु के चरण में नहीं झुकता, जिसके सर के ऊपर तिलक की रेखाएं नहीं हो, जिसके कंठ में तुलसी की माला ना हो, उसको पकड़ पकड़ करके मेरे पास ले आना। ये यमराज की स्टेटमेंट है अपने दूतों को। और जिसकी मस्तक भगवान की चरण में झुके, जिसकी जिह्वा प्रभु का नाम में लगा रहे, स्वप्न में भी दूतों सुनो, स्वप्न में भी उनके दरवाजे में नहीं जाना। इसलिए भक्त लोग कभी कभी हम तिलक पहन के बाहर जाते ना, हमें दूसरे लोग जब हमें देखते हैं बड़ा शर्म आता है। मैं कच्ची स्टेज की बात बता रहा हूं, डिवोशनल सर्विस का नहीं, संकोच नहीं करना। संसार कहता है ये भक्त पागल है, ये सबको छोड़ करके मस्तक मुंडन करके धे धे करके नाचता है। पर भक्त जानता है ये संसारी लोग पागल है, क्षणिक सुख के लिए भागते हैं। ऐसा उदाहरण ले लो, एक मधुमक्खी है और एक मक्खी है, ये दोनों ही भागते हैं, उड़ते नहीं है दोनों, दोनों ही उड़ते हैं। पर स्वभाव में जो मक्खी है वो गंदगी में बैठ जाता है, अटक जाता है। मधुमक्खी जो है वो फूल ढूंढते रहता है, किसी में मधु हो और उसमें बैठ करके वो मधु को चूस लेता है। अंतर इतना है, अंतर इतना है, जे का कह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक का कहो, बसंत काल संप्राप्ते का कह पिक पिक। कोयल भी काला है और कौवा भी काला है, कोयल भी काला है और कौवा भी काला है, परंतु कौवा सबरे उठ करके का चित्कार करता है। बसंत काल संप्राप्ते, जब बसंत ऋतु आ जाए, जो कोयल है वो मैंगो पेड़ के ऊपर बैठ करके कुहू कुहू राव करते है, कान को सुनने के लिए बड़ा सा सुंदर, और कौवा का चित्कार करता है। व्यक्ति समझ सकता है ये कौवा है और ये कोयल है, गोविंद समझते इस बात को। दूसरी उदाहरण है बकह श्वेत हंस श्वेत, को भेद हंस बकयो। बगुला भी देखने के लिए सफेद है और हंस भी देखने के लिए सफेद है, ये दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, सफेद रूप दोनों का है। भले निरक्षीर विभेदेशु हंस हंस बक बक, भले जब पानी और दूध को अलग करने की बात आए तो बगुला जो है वो देखते रह जाता है और हंस जो है पानी को छोड़ करके दूध को पी लेता है। ऐसे ही बेशक संसारी व्यक्ति दौड़े और भक्त दौड़े, पर जब मृत्यु उपस्थित होता है वो गोविंद के गीत गाता हुआ वैकुंठ को चला जाता है, संसारी फंस जाता है, जन्म मृत्यु की चक्कर में फंसा रहता है। अंतर इतना है, इसलिए अभ्यास बड़ा सुंदर करो। मनुष्य की जीवन वीणा की सदृश है, वीणा में तीन तार होते हैं, और तार को जोर से मोड़ दोगे एकदम आवाज फट जाएगा, आवाज कड़क आवाज निकले, क्योंकि जोर टाइट हुआ है ना, और एकदम ढीला कर दोगे आवाज निकलेगा नहीं, बुम बुम। किंतु गीत गाने के लिए एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको स्वर मिलाना कहते हैं, ठीक इतना ढीला भी ना हो इतना टाइट भी ना हो, स्वर ठीक से निकलता है, वो जौवन है। तीन चीज हमारे इस्कन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो प्रभुपाद ने संगठित किया, इनमें तीन बात बहुत मजबूत रूप में है। हम लोग में ज्यादा बूढ़ा कोई नहीं है, हमारा सोसाइटी को कोई देखे सब यंग है, बूढ़े लोग बहुत कम है। और हम गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि में जाएं, बहुत वृद्ध श्रेणी भक्त वृंद है, यंग बहुत कम है, तो हम सब यंग है और हमारे पास धन राशि भी है और मैन पावर भी है। ये श्लोक हमारे भूल जाता हूं उनका नाम, संतों का, उनके पिताजी बाल्यकाल से उनको उपदेश दिया करते हैं, देते थे, जौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकै कम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। हे पुत्र मेरे, देखो जौवन भी एक अनर्थ का कारण है, जौवनम, और जौवन के साथ धन आ जाए वो भी और अनर्थ का कारण है। जौवनम धन संपत्ति, बहु संपत्ति भी मिल जाए वो भी अनर्थ का कारण है, अहंकार भी अनर्थ का कारण है और मूर्खता भी एक अनर्थ का कारण है। जौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय, ये एक दूसरे में दूसरे से अनर्थ का कारण है, बहुत अनर्थ सृष्टि करने में समर्थ है। इसलिए बालक अपने को संभाल के बुद्धि से काम लेना। देखो भक्त, हम सभी यंग है, इसकन के पास धन भी है तभी तो हम इतने बड़े प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का विजन छोटा नहीं था, प्रभुपाद साधु थे पर थोड़े से अलग रूप में उन्हें संसार को देखा। प्रभुपाद जी की फिलोसफी ये था, एक चोर अगर 60 किलोमीटर वेग में भागता हो चोरी करके, पुलिस को चाहिए उससे तेजी भागना पड़ेगा, नहीं तो वो चोर को नहीं पकड़ सकता। संसार के लोगों को भक्त बनाना है तो एक अच्छा सा गेस्ट हाउस चाहिए जो संसार के लोग आके रुके और उनके कान में ये आवाज जाए हरि नाम के संकीर्तन, भक्तों का संग करे, ऑटोमेटिक एक दिन कोई भक्त बनेगा। और इसी से हम सभी भक्त बने हैं। आज अगर ये मंदिर इतना सुंदर नहीं होता, राधा राजबिहार जी इतने सुंदर नहीं होते, भक्त यहां कीर्तन नहीं करते तो हमारा आकर्षण कैसे बढ़ता? आकर्षण, आकर्षण करने के लिए कुछ चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बड़े सक्सेस रहे कलयुग में धर्म प्रचार में, क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी टेक्निक चेंज की। बड़े 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 सो कॉल्ड पढ़े लिखे व्यक्ति, तो उनको भक्त बनाने के लिए कुछ हमें पहले उस प्रकार करना पड़ेगा, नहीं तो लोग नहीं आएंगे। हमारे स्कन के जितने भी भक्त है ये बड़े साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, पर साधु समाज के लिए ये थोड़ी सी उल्टा है। इतना वैभवी कपड़ा आप लोग पहनते हो, आप क्या साधु बनोगे? ये सत्य की बात पर आधारित नहीं है। हाँ, कोई उसकी मिसयूज कर ले वो बात अलग रूप में है, किंतु अगर हम साफ कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम आज अगर किसी बड़े कंपनी के डायरेक्टर को मिलने जाएं वो हमें आना नहीं देगा, तो बोलेगा बोलो बाद में जाए। वो बात तो छोड़ो, सुदामा के केस में क्या हुआ? सुदामा विप्र जब भगवान कृष्ण के सामने द्वारका में पहुंचे, द्वारका के लोग उसको आने दिए? क्यों नहीं आने दिए? क्योंकि फटे टूटे कपड़े, देखने की जीर्ण, तुम कौन हो ना? हमें साफ सुथरा इसलिए है क्योंकि हम डील करते हैं माया से, किंतु ये शब्द का अर्थ नहीं हम उसमें रम जाएं। रमना नहीं, केवल प्रचार के लिए इसको हम यूज करें, किंतु उसमें हम लुप्त ना हो जाए। लुप्त होने से क्या होगा? दोष आ जाएगा, फिर दोष से अधर्म की शुरुआत होगी और अधर्म में भगवान भगवान धर्म के हैं, अधर्म के नहीं है। हरे कृष्ण। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चन? वेयर एंड टाइम प्रभु जी, मैं लेट हो गया, टाइम थैंक यू 9 बजे ठीक है। गत बार हम लोग देर हो गया था, पता नहीं चला गाड़ी को। यस प्रभु जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन किए। इस श्लोक में इंद्र को अधर्म के लिए कहा गया है।
अधर्म के लिए, अधर्म के लिए
इंद्र ने क्या अधर्म किया था?
इंद्र ने जितने अधर्म किए हैं अगर मैं आपसे कहूं और 3 घंटा चाहिए तो एक बात मैं आपको इंद्र के लिए कहता हूं, इसलिए हमें देवपद भी नहीं चाहिए। हम देवता बनने की अभिलाषी भी नहीं है, क्यों? देवता लोग भी बड़े बड़े अपराध कभी करते हैं। एक बार की कथा इसे अहल्या की, अहल्या की यौवनावस्था में देवराज इंद्र उसके ऊपर पाप आंखें डाले रखे थे, पर समावर रदर अहल्या उनको प्राप्त नहीं हुआ। अहल्या की विवाह गौतम मुनि से हो गया, पर इंद्र ने बोला तुमने शादी किया अच्छा। तो इंद्र ने एक दिन गौतम मुनि के रूप में अहल्या के पास आ गए। क्या ये क्राइम नहीं है? आप बताओ देवराज इंद्र, ये एक बात नहीं, कितनी भी बातें देवराज इंद्र के लिए से। और देवराज इंद्र भोग विलास में रहते हैं, परंतु हम उनकी निंदा नहीं करते क्योंकि वो देवता है, देवता हमसे बहुत गुना अच्छा है, परंतु हम स्वर्ग की अभिलाषी नहीं है, हम सेवा की अभिलाषी है। सेवा में जितना प्रेम, जितना शांति, जितनी ताकत है वो स्वर्ग की भोग में भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग की भोग जो है तुच्छ। कैवल्यम नरक आयते, हाँ कैवल्य मतलब है मुक्ति व निर्वाण, उसको हमारे वैष्णव संप्रदाय ने नरक के समान देखा है, हमें अभी हम स्वर्ग का अभिलाषी नहीं है। और इंद्र को एक बार शुक्र जुनि में इंद्र जन्म हुए, जब वो विष्ठा खा के आनंद पा रहे थे उनको सभी ने कहा इंद्रणी दुखी आप चलो, बोले मैं यहां बहुत खुश हूं। देवता भी बड़े बड़े कष्ट करते हैं, इसलिए वो हमेशा उनको यही चिंता होता है मेरा पोजीशन नहीं छिन जाए, तो वो उनकी जो अष्ट अक्षरी है कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। उर्वशी मेनका आरंभा घृताची चतिलोत्तमा सुकेशी मंजु घोषी च चित्ररेखा प्रकीर्तिता। ये अष्ट अप्सरियां हैं, और उर्वशी का जन्म तो भगवान के उरु से है, उसे ब्रह्मा जी ने अपवित्र किया, नहीं तो इंद्र से उनकी शादी होने वाली थी, और बाद में वो अप्सरी बन के रह गई और वो आनंद में जीवन बिताते हैं। इसलिए अधर्म की बातें थोड़ी सी यहां है, कुछ चरित्र और सुंदर सुंदर है इंद्र के बारे में। क्षमा चाहता हूं भक्त। यस प्रभु जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया सेवा करना चाहिए, सेवा मतलब, सेवा का मतलब जो उनके इच्छा क्या है मोह जानने के लिए, उसके लिए तो त्रिकाल न्याय होना चाहिए, हम तो अभी सेवा नहीं कर सकते हैं, ये कैसे सेवा करें?
नहीं छोटे भाई, हमारे त्रिकालज्ञ होने की आवश्यक नहीं है, बुद्धिमान होने की आवश्यक है, बुद्धिमान होने की आवश्यक है। एक गुरु की चलाते गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये कथा को बार बार कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का प्राय कथा में वो इसी बात को कहते हैं। तो गुरु और शिष्य के साथ थे, तो एक दिन गुरु और शिष्य दोनों घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तो गुरुजी ने उन्हें कहा था ये देखो अगर मैं घोड़े के ऊपर पहली बार बैठ रहा हूँ भाई ये कर रहा हूँ, जो अगर कोई चीज गिर जाए तो उसको उठा लेना, कोई चीज गिर जाए तो उसको उठा लेना, सॉरी ऐसा नहीं था, कोई चीज ऐसे ही कथा था। तो वो घोड़े के ऊपर बैठते जा रहे थे तो घोड़ा ने टट्टी किया तो वो उतर के उसको उठाने लगे, तो फिर गुरुजी ने बोला एक इसको नहीं उठाना, जी टट्टी को क्यों उठाना चाहते हो, कोई बात नहीं, पर एक बार गुरु ही गिर पड़े फिर वो चला गया और उठाया नहीं। तो कहने का अर्थ ये था यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यक है, जब आप किसी के साथ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बिताते हो वो किस स्वभाव से बिलंग करता है आपको ऑटोमेटिक मालूम होना चाहिए। जैसे एक माँ है और बच्चा है, बच्चा को क्या चाहिए पिता माता को पहले मालूम पड़ जाता है, पर यहाँ पर त्रिकालदर्शी की होना आवश्यक नहीं है। मैं एक स्वाभाविक रूप में ये बात को कहा, पर आपने बहुत उसको डीप ले लिया ना। सेवा शब्द का अर्थ है आप जानते हो 9 बजे प्रभु जी को प्रसाद चाहिए, नॉर्मली कल हम एकादशी पालन किए, द्वादशी आज है, आज 9 बजे हम ब्रेकफास्ट तोड़ेंगे, तो प्रभु जी को बोलने की आवश्यक नहीं है। 9 बजे से पहले प्रभु जी आपका प्रसाद में रख दिया हूं, आप आज एकादशी तोड़ दीजिए, वो अच्छा सेवा है। दैट्स आई ओनली वांट टू से, डिड यू अंडरस्टैंड मी? आपने समझा मुझे, है ना? तो इसमें त्रिका लगे होने की आवश्यक कहां है? ये तो एक साधारण बात है, जो एकादशी तोड़ना है, द्वादशी पारण करना है हमें, तो 9 बजे ग्रहण खाना है। तो प्रभु जी 9 बज गया, आइए उनको स्मरण करा दो आप, वो उत्तम सेवा है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा
प्रभु जी। जो आपने स्टेटमेंट बताया कि जो तिलक लगाएं, कंठी माला पहने,
हाँ,
उनके यहाँ यमदूत नहीं आएंगे,
नहीं।
ये स्टेटमेंट सुनकर यदि कोई सिर्फ दिखाने के लिए लगाए,
हाँ,
कंठी माला दिखाने के लिए करे,
हाँ,
लेकिन भक्ति ना करे,
हाँ,
ये जानकर कि मुझे यमदूत नहीं पकड़ेंगे,
हाँ,
बचने के लिए अगर वो झूठा मूठा ऐसा प्रयास करे तो उसकी क्या स्थिति होगी?
भगवान ने इसे कहा है जे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानि ही विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अगर हम ठगने के लिए भी इस यूनिफॉर्म को धारण करते हैं फिर भी इससे बहुत अच्छा फल है। एक उदाहरण है अग्नि का, यदि पापी व्यक्ति अग्नि को छू ले और धर्मपरायण व्यक्ति अग्नि को छू ले, क्या धर्मपरायण व्यक्ति को अग्नि छोड़ देगा? क्यों नहीं? तुलसी माला की महिमा आप जानते हो कितना है? सुनो, वृंदा वृंदावनी कृष्ण पावनी तुलसी, कृष्ण पावनी तुलसी वृंदावनी जीवनी कृष्ण जीवनी, ऐसे ही 8 नाम तुलसी की है। यदि कोई व्यक्ति ये 8 नाम की जप प्रत्येक दिन तुलसी के सामने करे, 100 अश्वमेध यज्ञ की फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि एक तुलसी की काष्ठ एक मृत व्यक्ति के शरीर के ऊपर गिर जाए, 1000 काष्ठों को वो तुलसी काष्ठ पवित्र बनाकर उसको वैकुंठ में ले जाती है। तुलसी काष्ठ से निर्मित यदि पितृदान के लिए हम भगवान के लिए नैवेद्य बनाते हैं और उसको पितृपिंड में हम प्रयास करते हैं, पितृलोकों की उद्धार हो जाती है। तुलसी की छाया में यदि पिंडदान दिया जाए, 1000 गुण की फल बढ़कर के मिलता है। यदि हम कोई काशी और गया में भी जाके हम वो वर देते, उसकी बराबर फल तुलसी में है। और तुलसी विष्णु को भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की कंठी माला हाथ में धारण कर रखा हो, कंठे में धारण किया हो, देवताएं उस व्यक्ति के लिए स्तुति करते हैं। नॉट ओनली दैट, जब वो व्यक्ति प्राण त्यागता है, विष्णु भगवान स्वयं आकर के धन्य धन्य कह करके उसे हाथ पकड़ करके कहते, तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि कंठी माला धारण किए हुए हो। यदि कोई देखावा के लिए भी सही इस बात को धारण करता है, समाज की दृष्टि से वो ठीक नहीं है ना? क्योंकि हम ठगने के लिए करते हैं। किंतु फिर भी मैंने कल एक कथा सुनाई थी जो तुलसी के ऊपर उसने पी की, मतलब अपने लघु शंका की, किंतु तुलसी को पकड़ रखने के कारण उसकी गति सुधर गई, क्योंकि संघ की महात्मा है। इसलिए संघ उचित करो, जिसके सर के ऊपर तिलक की माला हो। अच्छा, हम कितने शुद्ध हृदय से है किसको पता, परंतु हम द्वादश तिलक करते हैं, ललाटे केशवम ध्यायेत नारायणं मथोदरे
वक्षस्थले माधवंतु गोविंदं कंठकूपके विश्वंच दक्षिण कुक्षौ बाहू च मधुसूदनम त्रिविक्रमं स्तंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरं वाम बाहोतुं हुषिकेशं च कंधरे पृष्ठीतु पद्मनाभं च कट्यं द्यामोदरं न्यसेत् तत्प्रक्षालयन्तु वासुदेवाय मूर्धने। ये द्वादश तिलक अगर किसके शरीर के ऊपर हो, अगर वो पापी से पापी तक क्यों ना हो, अगर एक्सीडेंट में भी उसकी मृत्यु हो जाए फिर भी जमराज उसके शरीर को नहीं टच कर सकते, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए भक्त शंका नहीं करो, ये मंदिर है हरि मंदिरम, ये शरीर के अंदर हरि खेलते हैं, इनको सुंदर से गोविंद के नाम से सजाओ, कंठी माला पहनो, तिलक धारण करो। मैंने काल भी कहा था, वामो पार्श्वे वसित ब्रह्मा दक्षिणेस्तु सदा शिव मध्ये विष्णु तिष्ठन्ति। तिलक की वाम भाग में ब्रह्मा जी, दक्षिण भाग में सदा शिव और विष्णु में तुलसी। इसलिए शास्त्र कहता है ये चलती प्रतिमा, चलती मंदिर है भक्त। मंदिर को लोग चलने के लिए चल करके आते हैं। अगर कोई ये कहे मैं मंदिर चलना नहीं चाहता हूँ, मेरे पैर में दर्द है, अगर वो भक्त को चलता हुआ देखे और उसके सर पर एक पुंडरीकाक्ष ये तिलक को देखे, वो डीटी के दर्शन के फल के बराबर फल है, इतनी है। तो इसलिए संकोच नहीं करना। यमराज क्या करेगा, विष्णु जहां पर नाम सजा हुआ है, आप भागवत की कथा है, जो वो काली महाराज के पास जब ले गए उनको जड़भरत जी को, किंतु उनके शरीर में हरि नाम लिखा हुआ था, इसलिए वो बलि योग्य भी नहीं हुए, उनको छोड़ना पड़ा। हाँ, इसलिए भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनका गारिमा बहुत है, वो बड़े सहनशील होते हैं। हाँ, तिलक की ये जो तिलक की रेखा, इसकी महिमा, ये भृगु ऋषि की चिन्ह है। प्रथम चिन्ह भृगु ऋषि की पैर, दूसरी चिन्ह तुलसी की पत्ता, ये दोनों के समावेश है इस तिलक में। ये किंतु गौड़ीय संप्रदाय ने इसको एडप्ट किया है, पर और भी आचार्य जैसे हमारे एक प्रभु जी हैं, हम रामानुजाचार्य संकेत, जो सब वैष्णव वृंद बड़े सुगम है, परंतु गौड़ीय वैष्णव वृंद की ये यूनिफॉर्म है। पर ये भृगु ऋषि की पैर चिन्ह है, भृगु ऋषि की पैर चिन्ह को भगवान ने धारण किया अपने हृदय में। क्यों, यदि वैष्णव हो करके विष्णु आराधयते इति वैष्णव, जो वैष्णव विष्णु आराधना में लगा हुआ है, यदि वो चंडाल कुल में भी जन्म लिया है, सालग्राम शिवलिंग सहस्राणी शालिग्राम शतानि च द्वादश कोटि विप्राणम् एकः सोपाको वैष्णवः। चंडाल कुल में जन्म लिया हुआ एक वैष्णव, यदि कोई व्यक्ति हजारों शिवलिंग सहस्राणि, हजारों शिवलिंग की उपासना प्रत्येक दिन करता हो, शालिग्राम शतानि च, सौ शालिग्राम की पूजा आराधना नित्य प्रति करता हो, ये सभी एक द्वादश कोटि विप्राण, 12 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन नित्य प्रति देता हो, ये सभी मिला करके जितने पुण्य इकट्ठे हो जाए वो एक चंडाल वैष्णव के बराबर नहीं कर सकता, तो क्या कहना। हाँ, किंतु इसको दृढ़ता से स्वीकार करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं सो धर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मान भयावह। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में ज्वाइन किए हैं, हमारा शादी तो उसी सोसाइटी से हो चुका है, फिर दूसरा कौन हो सकता है। पर हम किसी की निंदा स्तुति नहीं करते, सभी महान है, परंतु ये विश्वास हमारे गुरुजी ने हमें दिया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसको पूर्ण रूपेण श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता से पूर्ण विश्वास के साथ हम इसको धारण करेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। जमराज कैसे आएगा, कोई प्रमाण नहीं है जमराज के लिए। हाँ, ये अच्छा वृत्ति नहीं है, अनेक शास्त्र में इसे कथा होता है, ढोंग करते करते वो बदल भी गए हैं, जैसे मैंने कथा सुनाया व्याधस्याचरणम मुरगार की कथा, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव महाराज बाल्यकाल में भक्ति पाने के लिए उम्र की जरूरत नहीं, 5 साल की उम्र में ध्रुवस्य च वयो विद्या, यदि बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक पढ़ने से ही भगवत भक्ति होगा, जो गजराज को कौन से संस्कृत श्लोक आता था। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र से काया किं कुब्जाया किं नाम रूप अधिकम, कुब्जा के पास कौन सी ब्यूटी थी, वो तो टेढ़ी थी, देखने के लिए बड़े अगली थी, फिर भी ठाकुर जी उससे प्राप्त हो गए। किं तत सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था, निर्धन एक कांगल ब्राह्मण था, उसे भी ठाकुर जी प्राप्त हुए। किंग तत सुदामन धनम, वंश को भी दुरस्त, केवल ब्राह्मण लोग ही ठाकुर जी को प्राप्त होंगे, शूद्र नहीं और कोई जाति नहीं, ऐसा प्रमाण तो नहीं है। वंश का भी दुरस्त, विदुर जी के पास कौन सी खानदानी था, विदुर तो दासी पुत्र थे, तभी तो दुर्योधन ने इतने कटाक्ष से बात कर दिया, भगवान को कहा विदुर कहते हैं ये, दुर्योधन ने विदुर के प्रति ये शब्द में निष्ठुर शब्द में विदुर जी को पूछा, न भगवान कृष्ण को पूछा, ये भीष्म द्रोण परित्यज्यम मांचैव मधुसूदन, भीष्म द्रोण परित्यज्यम मांचैव मधुसूदन, मांचैव मधुसूदन किमर्थे पुंडरीकाक्ष कृतः भूषली भोजन, भूषली भोजन मतलब आपने दासी पुत्र के घर में क्या खाया, कितना कठोर शब्द, दासी पुत्र थे विदुर जी, फिर भी वो मान थे नहीं थे, इसलिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल हु इज वे द मेडिसिन एंटर इन द बॉडी, बट वी सो मच केयर, मेडिसिन हैज टू बी प्योर, डजंट मैटर हम टेबलेट में खाए इंजेक्शन के माध्यम से खाए, पर मेडिसिन अगर उचित नहीं है रोग के लिए, शरीर खतरा में आ सकता है। परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कलिजुग की जो धर्म है ये नाम संकीर्तन, कलौ शूद्र संभवा, कलिजुग के प्राणी सब शूद्र स्थिति में होते हैं, और जब जब अंतिम चरण में श्रीमद् भागवत पहुंचा सत्य
संकीर्तनम
कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतामखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना, हरि की कीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा, देयर इज नो अदर वे टू गो एक्सेप्ट होली नेम ऑफ द लॉर्ड और नाम संकीर्तन। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एकः महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे, और क्या हो सकता है। पिबन्ति ये भागवतः आत्मनसतम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभूतम पुनन्ति ते विषय विदुषिता स्वयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम, ऑटोमेटिकली दैट पर्सन बिकम एलिजिबल टू एंटर वैकुंठ और लोटस फीट ऑफ द मुकुंद ऑटोमेटिकली, दैट्स व्हाई व्हेन देयर इज हरिकथा डोंट डिले यू कम बिफोर टाइम, व्हाई चैतन्य महाप्रभु सेड सिद्धांत सुनिते ना करियो आलस, जहां पर सिद्धांत की चर्चा हो आलस को त्यागो, समय से पहले पहुंचो और सुनो। कान एक ऐसी माध्यम है, आज घर घर में कुंभकर्ण है, रामायण में कुंभकर्ण की कथा आता है रावण के भाई, कुंभकर्ण, कुंभ शब्द करते घड़ा और कर्ण शब्द कहते कान, जिसका कान घड़े के समान हो वो कुंभकर्ण है, ऐसा नहीं है। ये घड़ा इतना बड़ा है, जन्म से लेकर के अभी तक सुन रहे हैं संसार की कथा, फिर भी भरा नहीं है, आज तक नहीं भरा, कितना बड़ा घड़ा है देखो, घर घर में महामहा 5-5 10-10 कुंभकर्ण भरे हैं, रामायण में एक कुंभकर्ण की बात छोड़ो, अपने घर को देखो, हाँ क्या हुआ, अच्छा 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 अच्छा
विषय। पर इसी कारण में यदि कभी कृष्ण कथा पिबंती भागवत आत्मनुसताम कथामृतम, भगवत कथा रूपी अमृत को पान करो, कान के माध्यम से क्या होगा, विषय विदुषिता, विषय विषय का नाश हो जाएगा जड़ से। फिर ब्रजंती तत् शरण दैट पर्सन बिकम एलिजिबल टू एंटर किंगडम ऑफ द गॉड, लोटस फीट ऑफ द मुकुंदा, भगवान उसे उठा, इसलिए तो हम सिक्का रखे हैं। ये सिक्का ऐसे भवजल में जब भक्त डूबता है ठाकुर जी उस सिक्का पकड़ के खींच लेते हैं, ये विश्वास है। कमल पद्म पुराण के स्टेटमेंट है, नलिनी जैसे कमल के फूल पंख से निकल करके समस्त पानी को फूट फूट करके ऊपर खिलता है, ऐसे ही भगवत परायण व्यक्ति भगवान के मुखार निश्रित, जो अगर कोई भगवान के नाम जीवाग्र में ले, विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विस्तर स्रवत दामोदर ऋषिकेश केशव माधव शोभो दैतारी पुण्यरिकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज पीताम्बर अच्युत सारंगिन विश्वकसेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्रावरज चक्रपाणी चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरीपुर वासुदेव त्रिविक्रम देवकीनंदन सौरी श्रीपति पुरुषोत्तम वनमाली बलिध्वंसी कंसा रात्रि अधोक्षज। इन पवित्र नाम को जो व्यक्ति जीवाग्र में रटने लगता है पाप वहां टिक कैसे सकता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही मायार अधिकार। माया रूपी सूखा हुआ लकड़ी को कृष्ण नाम रूपी जाजुल्यमान बन्नी जला करके राख कर देता है, पर वो पूर्ण विश्वास के साथ होना चाहिए, नहीं रुक सकता माया सामने। इसलिए हरि नाम लेने वाला व्यक्ति महान है और हरि नाम को सुनने वाला व्यक्ति भी महान है। बोले कैसे ना, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्री निपुनाती वक्तारं पृच्छकं स्मत्रु तत्पाद सलिलम जथा। जो व्यक्ति वासुदेव की कथा बांटता है और जो वसुदेव पुत्र भगवान कृष्ण के बारे में वो कथा का श्रवण करता है और जो व्यक्ति भगवान के बारे में प्रश्न पूछता है, ये तीनों को तीनों व्यक्ति राजा ऐसे ही पवित्र हो जाते हैं जैसे कि गंगोदक में गंगा जल में स्नान करने के बाद पापी भी पवित्र आत्मा होता है और चरणामृत पान करने के बाद व्यक्ति पवित्र अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए भगवत कथा नित्य प्रतिनित्यम भागवत सेवया। भागवत भी दो प्रकार की है, एक ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत के आश्रय में रह करके ग्रंथ भागवत का आस्वादन करो, फिर भी मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण
हरे
कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, निताय गौर सुंदर भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ना ना ना।